श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 46 उद्धव की वृंदावन यात्रा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत बुद्धिमान उद्धव वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र तथा बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। भगवान हरि ने जो अपने शरणागतों के सारे कष्टों को हरने वाले हैं, एक बार अपने भक्त एवं प्रियतम मित्र उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे इस प्रकार कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे भद्र उद्धव, तुम ब्रज जाओ और हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो। यही नहीं, मेरा संदेश देकर उन गोपियों को भी क्लेश मुक्त करो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही हैं। उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं और उनके प्राण सदैव मुझी में अनुरक्त रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए ही अपने शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं को त्याग दिया है। यहाँ तक इस जीवन के सामान्य सुख के साथ साथ अगले जीवन में सुख प्राप्ति के लिए जो धार्मिक कृत्य आवश्यक है उन तक का परित्याग कर दिया है। मैं उनका एकमात्र परम प्रियतम हूँ, यहाँ तक कि उनकी आत्मा हूँ। अतः मैं सभी परिस्थितियों में उनका भरण पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। हे उद्धव, गोकुल की उन स्त्रियों के लिए मैं सर्वाधिक स्नेह योग्य प्रेम पात्र हूँ। इस तरह जब वे दूर स्थित मुझको स्मरण करती हैं, तो वे वियोग की उद्विघ्नता से विह्वल हो उठती हैं। क्योंकि मैंने उनसे वापस आने का वादा किया है, इसीलिए मुझ में पूर्णता अनुरक्त मेरी गोपियां किसी तरह से अपने प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह कहे जाने पर उद्धव ने आदर पूर्वक अपने स्वामी के संदेश को स्वीकार किया। वे अपने रथ पर सवार होकर नंद गोकुल के लिए चल पड़े। भाग्यशाली उद्धव नंद महाराज के चरागाहों में उस समय पहुंचे जब सूर्य अस्त होने वाला था और चूंकि लौटती हुई गौवें तथा अन्य पशु अपने खुरों से धूल उड़ा रहे थे, अतः उनका रथ अनदेखे ही निकल गया। ऋतुमती गोवों के लिए परस्पर लड़ रहे सांडों की ध्वनि से अपने बछड़ों का पीछा कर रही अपने थनों के भार से रंबाती गोवों से दुहने की तथा इधर उधर कूद फांद कर रहे श्वेत बछड़ों की आवाज से वंशी बजाने की ऊंची गूंज से उन गोपों तथा गोपिनों द्वारा जो गांव को अपनी अद्भुत रीति से अलंकृत वेशभूषा से सुशोभित कर रहे थे, कृष्ण तथा बलराम के शुभ कार्यों के गुणगान से गोकुल ग्राम सभी दिशाओं में गुंजायमान था। गोकुल में ग्वालों के घर, यज्ञ अग्नि, सूर्य, अचानक आए अतिथियों, गौवों, ब्राह्मणों, पितरों तथा देवताओं की पूजा के लिए प्रचुर सामग्रियों से युक्त होने से अतीव आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैले थे, जो पक्षियों तथा मधुमक्खियों के झुंडों से गुंजायमान हो रहे थे, और हंस कारंडव तथा कमल कुंजों से भरे पूरे सरोवरों से सुशोभित थे। ज्यों ही उद्धव नंद महाराज के घर पहुंचे, नंद उनसे मिलने के लिए आगे आ गए। गोपों के राजा ने अत्यंत सुखपूर्वक उनका आलिंगन किया और वासुदेव की ही तरह उनकी पूजा की। जब उद्धव उत्तम भोजन कर चुके और उन्हें सुखपूर्वक बिस्तर पर बिठा दिया गया तथा पांव की मालिश तथा अन्य साधनों से उनकी थकान दूर कर दी गई, तो नंद ने उनसे इस प्रकार पूछा। नंद महाराज ने कहा, हे परम भाग्यशाली, अब चूर का पुत्र मुक्त हो चुकने और अपने बच्चों तथा अन्य संबंधियों से पुनः मिल जाने के बाद कुशल से है ना? सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण पापात्मा कंस अपने समस्त भाइयों सहित मारा जा चुका है। वह सदैव संत तथा धर्मात्मा यदुओं से घृणा करता था। क्या कृष्ण हमारी याद करता है? क्या वह अपनी माता तथा अपने मित्रों एवं चुप चिंतकों की याद करता है? क्या वह ग्वालों तथा उनके गांव ब्रज को, जिसका वह स्वामी है, स्मरण करता है? क्या वह गोवों, वृंदावन के जंगल तथा गोवर्धन पर्वत की याद करता है? क्या गोविंद अपने परिवार को देखने एक बार भी वापस आएगा? यदि वह कभी आएगा तो हम उसके सुंदर नेत्र, नाक तथा मुस्काते सुंदर मुख को देख सकेंगे। उस महान आत्मा कृष्ण द्वारा हम जंगल की आग, तेज हवा तथा वर्षा, सांड तथा सर्प रूपी असुरों जैसे दुर्लभ घातक संकटों से बचा लिए गए थे। जब हम कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्यों, उसकी चपल चितवन, उसकी हंसी तथा उसकी वाणी का स्मरण करते हैं, तो हे उद्धव, हम अपने सारे भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। जब हम उन स्थानों को यथा नदियों, पर्वतों तथा जंगलों को देखते हैं जिन्हें उसने अपने पैरों से सुशोभित किया और जहां उसने क्रीड़ाएं तथा लीलाएं की, तो हमारे मन उसमें पूर्णतया लीन हो जाते हैं। मेरे विचार से कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही दो श्रेष्ठ देवता हैं, जो इस लोक में देवताओं का कोई महान उद्देश्य पूरा करने आए हैं। गर्ग ऋषि ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। अंततः कृष्ण तथा बलराम ने 10,000 साथियों जितने बलशाली कंस को और साथ ही साथ चाणूर और मुष्टिक पहलवानों एवं कुवलिया पीड़ हाथी को मार डाला। उन्होंने इन सबों को उसी तरह खेल खेल में आसानी से मार डाला जिस तरह सिंह छोटे पशुओं का सफाया कर देता है। जिस आसानी से कोई तेजस्वी हाथी किसी छड़ी को तोड़ देता है, उसी तरह से कृष्ण ने 3 ताल जितने लंबे एवं सुदृढ़ धनुष को तोड़ डाला। वे 7 दिनों तक पर्वत को केवल 1 हाथ से ऊपर उठाए रहे। इसी वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम ने बड़ी ही आसानी से प्रलंब, देनुक, अरिष्ट, तृणावर्त तथा बक जैसे उन असुरों का वध किया जो स्वयं देवताओं तथा अन्य असुरों को पराजित कर चुके थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बारंबार कृष्ण को उत्कटता से स्मरण करते हुए भगवान में पूर्णतया अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को अत्यधिक उद्विग्नता का अनुभव हुआ और वे अपने प्रेम के वेग से अभिभूत होकर मौन हो गए। ज्यों ही माता यशोदा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों का वर्णन सुना, त्यों ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तब भगवान कृष्ण के प्रति नंद तथा यशोदा के परम अनुराग को स्पष्ट देखकर उद्धव ने हर्ष पूर्वक नंद से कहा। श्री उद्धव ने कहा, हे माननीय नंद, संपूर्ण जगत में निश्चय ही आप तथा माता यशोदा सर्वाधिक प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपने समस्त जीवों के गुरु भगवान नारायण के प्रति ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न कर रखा है। मुकुंद तथा बलराम ये दोनों विभु ब्रह्मांड के बीज तथा योनि, सत्रष्टा तथा उनकी त्रिजन शक्ति हैं। ये जीवों के हृदयों में प्रवेश करके उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। ये आदि परम पुरुष हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह अशुद्ध अवस्था में ही क्यों न हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को उन भगवान में लीन कर देता है तो उसके सारे पापमय कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं, जिससे उनका नाम निशान भी नहीं रह जाता और वह सूर्य के समान तेजस्वी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। आप दोनों ने उन मनुष्य रूप भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेमा भक्ति की है, जो सबों के परमात्मा है और सारे प्राणियों के कारण स्वरूप है और जो सबों के मूल कारण है। भला अब भी आपको कौन से शुभ कर्म करने की आवश्यकता है? भक्तों के स्वामी अच्युत कृष्ण शीघ्र ही अपने माता पिता को तुष्टि प्रदान करने के लिए व्रज लौटेंगे। रंगभूमि में समस्त यदुओं के शत्रु कंस का वध कर चुकने के बाद अब कृष्ण वापस आकर आपको दिए गए वचन को अवश्य ही पूरा करेंगे। हे भाग्यशाली जनों, आप शोक मत करो, आप शीघ्र ही कृष्ण को देख सकेंगे। वे समस्त जीवों के हृदयों में उसी तरह विद्यमान हैं, जिस तरह काष्ठ में अग्नि सुप्त रहती है। उनके लिए कोई न तो विशेष प्रिय है न अप्रिय, न तो श्रेष्ठ है न निम्न है, फिर भी वे किसी से अन्य मनस्क नहीं है। वे सम्मान पाने की सारी इच्छा से रहित हैं, फिर भी वे सबों का सम्मान करते हैं। न तो उनके माता है न पिता, न पत्नी न पुत्र या अन्य कोई संबंधी, उनसे किसी का संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराया नहीं है। न तो उनका भौतिक शरीर है न कोई जन्म। उन्हें इस जगत में ऐसा कोई कर्म करना शेष नहीं जो उन्हें शुद्ध अशुद्ध या मिश्रित योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सके। फिर भी अपनी लीलाओं का आनंद लेने और अपने साधु भक्तों का उद्धार करने के लिए वे स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि दिव्य भगवान भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों से परे हैं, फिर भी क्रीड़ा के रूप में वे इनकी संगति स्वीकार करते हैं। इस तरह अजन्मा भगवान इन भौतिक गुणों का उपयोग सृजन पालन तथा संहार के लिए करते हैं। जिस तरह चक्री में घूमने वाला व्यक्ति धरती को घूमता देखता है, उसी तरह जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है वह अपने को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में उसका मन कार्यकर्ता होता है। निश्चय ही भगवान हरि एकमात्र आपके पुत्र नहीं है, प्रत्युत भगवान होने के कारण वे हर एक के पुत्र, आत्मा, पिता तथा माता है। भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चाहे वह भूत से या वर्तमान से अथवा भविष्य से संबंधित हो, वह देखी हो या सुनी हो, चर हो या अचर हो, विशाल हो या शूद्र, दरअसल वे ही सर्वस्व हैं, क्योंकि वे परमात्मा हैं। हे राजन, जब कृष्ण के दूत उद्धव नंद महाराज से बातें करे जा रहे थे तो रात बीत गई। गोकुल की स्त्रियां तब नींद से जग गई और उन्होंने दीपक जलाकर अपने अपने घरों के अर्चा विग्रहों की पूजा की। इसके बाद वे दही मथने लगी। जब ब्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए हाथों से मथाने की रस्सियां खींच रही थी तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित मणियों की चमक से दीपित हो रही थी। उनके नितंब, स्तन तथा गले के हार हिल डुल रहे थे और लाल कुमकुम से पुते उनके मुख मंडल गालों पर पड़ी कान की भालियों की चमक से चमचमा रहे थे। जब ब्रज की स्त्रियां कमल नेत्र कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी तो उनके घी उनके मथने की ध्वनि से मिलकर आकाश तक उठ गए और उन्होंने सारी दिशाओं के अमंगल को दूर कर दिया। जब सूर्य देव उदित हो चुके तो ब्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा, अतः उन्होंने पूछा, यह किसका रथ है? शायद अक्रूर लौट आया है, वही जिसने कमल नेत्र कृष्ण को मथुरा ले जाकर कंस की इच्छा पूरी की थी। जब स्त्रियां इस तरह बोल ही रही थी कि क्या वह अपनी सेवाओं से प्रसन्न हुए अपने स्वामी के पिंड दान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है, तभी प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त हुए उद्धव दिखलाई पड़े। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत उद्धव की वृंदावन यात्रा नामक 46वें अध्याय के श्रीला प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।